आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, SBS पर मैं हूं अनीता बरार। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI, इसने मानव जीवन को जिस तेजी से प्रभावित किया है वो हम सब जानते ही हैं। लेखन की दुनिया भी इससे अछूती नहीं है। क्या ये वास्तविक लेखकों जैसी रचनाएं प्रस्तुत कर सकता है और साहित्य के सामने क्या चुनौतियां हैं इसके लिए, बस इसी विषय पर आज बात की है तकनीकी के क्षेत्र में एक जाने माने नाम बालेंदु शर्मा दधीच जी के साथ, जो एल्गो टेक्नोलॉजीज के CEO हैं और ICANN के यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस एम्बेसडर भी हैं। इससे पहले वो माइक्रोसॉफ्ट में निदेशक के पद पर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एशिया और माइक्रोसॉफ्ट भारत में काम करते हुए उन्होंने भाषाई प्रौद्योगिकी के आधुनिकतम विकास का नेतृत्व किया। कई पुस्तकों के लेखक और कई देशीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हैं और इस विषय पर वो बताते हैं।
जी अनिता जी, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, आपके साथ मैं बात करने का बहुत समय से सोच रहा था कि कोई ऐसा अवसर आएगा, तो आज वो अवसर आया, उसके लिए आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप भी, मैं भी और हमारे दायरे में रहने वाले बहुत सारे लोग साहित्य से या तो लगाव रखते हैं, या तो उसके पाठक हैं, या फिर साहित्यकार खुद हैं। तो और ऐसे समय में जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में बहुत बड़े बदलाव ला रही है, ये प्रश्न आना स्वाभाविक है हमारे मन में कि क्या साहित्य इससे अछूता रहेगा क्या, और अगर अछूता नहीं रहेगा तो इसमें क्या बदलाव आ सकते हैं। और वो बदलाव सभी जो साहित्य के विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें लेखक है, प्रकाशक है, पाठक है, वितरक है, और इसी प्रकार के जो अन्य जैसे पत्र पत्रिकाएं हैं, समीक्षक हैं, क्योंकि बहुत बड़ा साहित्य का एक इकोसिस्टम होता है, वो इकोसिस्टम क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होगा क्या, और अगर प्रभावित होगा तो किस हद तक होगा। हालांकि ये जो बात है, थोड़ा बहुत हमें कल्पना की भी गुंजाइश है, तो हम एक तरह से कल्पना भी करते हैं कि ऐसा भविष्य हो सकता है क्या, किंतु स्वयं हमारी कल्पना में रूपांतरण हुआ है 2022 के नवंबर के बाद। क्योंकि अनिता जी, 2022 के नवंबर की 30 तारीख को ChatGPT का आगमन हुआ था हम लोगों के बीच में, जो एक जनरेटिव AI मॉडल था, और जनरेटिव AI मॉडल के आने के बाद से ये सारा बदलाव हुआ है। इतना ज्यादा बदलाव आ चुका है कि ये सारी आशंकाएं भी, सारी उम्मीदें भी, जिज्ञासाएं भी, अचानक इनका विस्फोट हुआ है पिछले 3 साल के भीतर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोगों ने धीरे धीरे एक बड़ी सामान्य सी तकनीक मानना शुरू कर दिया था 2022 से पहले। एक तकनीक आ रही है जो धीरे धीरे चीजों को प्रभावित कर रही है, अनुवाद होने लगा है, थोड़ा बहुत हम बोलकर टाइप करने लगे हैं या हम OCR करने लगे हैं, और इससे हमारी थोड़ी सुविधाएं बढ़ गई है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि हमारे जीवन को हिला देने वाली एक टेक्नोलॉजी आ जाएगी इसी के भीतर से निकल करके। जो अब परिस्थितियां ये है कि अब नवंबर 2022 के बाद AI का जो विकास हो रहा है वो एक्सपोनेंशियल ढंग से हो रहा है, और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है, जिनमें विज्ञान भी है, पत्रकारिता भी है, जिनमें रचनात्मकता भी है, बहुत सारी चीजें हैं, और साहित्य भी है। खासतौर पर ये जनरेटिव AI के आने के बाद इन सब में ज्यादा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा ऐसा लग रहा है। उसकी वजह यह है कि जनरेटिव AI जनरेट करने की क्षमता रखती है। पुरानी या कन्वेंशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट नहीं करती थी, रूपांतरित करती थी, ट्रांसफॉर्म करती थी।
बहुत बड़ा अंतर।
लेकिन जो मूल चीज थी, जो मूल तत्व था, वो उसको आपने दिया था, एक इंसान ने दिया था। अब इसी तरह से जैसे एक और उदाहरण आप देखिए कि हम जब बोल रहे थे तो हम बोल रहे थे, इंसान बोल रहा था जिसको AI लिख रही थी, यानी कि वो उसको रूपांतरित कर देती थी टाइप किए हुए टेक्स्ट में। इसी तरह से आप OCR करते थे, एक डॉक्यूमेंट उसको देते थे जो PDF हो सकता था या इमेज हो सकता था, और AI उसको टाइप किए हुए टेक्स्ट में बदल देती थी। यानी सोर्स जो था वो मानव के हाथ में था।
हाँ, बिल्कुल, जो कुछ था वो हमारा अपना था।
जो था आपका हमारा अपना था बिल्कुल, वो
जी
उसको समझिए कि हमारी मदद करती थी। अब जनरेटिव एआई आ गई है और जब सृजन करने में सक्षम है तो जीवन का हर क्षेत्र, खास तौर पर वो क्षेत्र जिसमें मानवीय रचनात्मकता की आवश्यकता है, वो इससे प्रभावित होता है। वो स्वतंत्र रूप से रचना कर सकती है। मानव पर निर्भरता इतनी ही है कि मानव उसे एक निर्देश दे दे कि ऐसा कर दो या वैसा कर दो।
लेकिन वो सृजन एआई का अपना कितना है और बटोरा हुआ कितना है?
जी, तो ये प्रश्न बहुत आता है और बड़ा बुनियादी और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एआई की समझ को समझने के लिहाज से
जी।
तो अनिता जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी बुद्धि है वो पैटर्न्स को इकट्ठा करके, पैटर्न्स को जानकर, पैटर्न्स के बारे में एक एक तरह की समझ पैदा करने के आधार पर विकसित हुई है। जैसे उदाहरण के तौर पर, एआई को हमने हिंदी के 5,000 डॉक्यूमेंट दिए और ये कहा कि इनको पढ़ो और इनके भीतर से तुम समझो कि ये क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन 5,000 दस्तावेजों को पढ़ती है और उनमें पैटर्न्स ढूंढती है कि कहीं इसमें ऐसे कोई रुझान है क्या जो दस्तावेजों में मैं जिनको गणितीय तरीके से समझ सकूं। उदाहरण के तौर पर, इस व्यक्ति की लिखने की शैली इस प्रकार की है, ये व्यक्ति जब लिखता है तो शुरू करता है प्रश्नवाचक से, पहला वाक्य लिखता है, दूसरा वाक्य इसका विस्मयादि बोधक में समाप्त होता है। पैटर्न्स
जी
है। अब ये पैटर्न्स शब्दों के रूप में भी हो सकते हैं, पदबंधों के रूप में भी हो सकते हैं, वाक्यांशों के रूप में भी हो सकते हैं, वाक्यों के रूप में भी हो सकते हैं, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट भी एक पैटर्न माना जा सकता है।
हाँ
तो वो पैटर्न्स ढूंढते हुए सीख जाती है कि इस विषय पर क्या लिखा गया है और उसमें से क्या मर्म है, और वो उसका प्रयोग करने की स्थिति में भी आ जाती है उन्हीं पैटर्न्स को इस्तेमाल करते हुए गणितीय तरीके से। अब वो एक अलग बात है कि गणितीय तरीके से कैसे करती है उस पर हम नहीं जाएंगे,
हाँ
लेकिन पैटर्न्स को इकट्ठा करना, एक दूसरे के साथ जोड़ना और अगला
जी
वाक्य तैयार कर देना।
जी
देखिए, जनरेटिव एआई में खास बात यह है कि इसको ये कहा जाता है कि ये अगले एक शब्द को की कल्पना करती है आपके वाक्य में।
जी
यहां पर लेकिन एक बात है अनीता जी, जो लोग सोचते हैं कि एआई मानव के तरीके से नहीं काम कर सकेगी, उनको थोड़ा सा निराश भी करेगा, क्योंकि मानव के सीखने की भी तो प्रवृत्ति यही है, उसकी भी तो प्रक्रिया यही है। आप देखिए कि जब बचपन में कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि आप किसी आदिवासी समाज में जाते हैं और वहां के लोगों को आप देखते हैं, तो उन्होंने जितना अपने आसपास देखा उनका ज्ञान वहीं तक सीमित है,
जी
वो उसी ज्ञान
जी
के आधार पर रचना करते हैं, उनको
हाँ
नहीं पता कि इसके बाहर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आप जब एक ऐसे समाज में जाते हो और ऐसे उत्कृष्ट या परिनिष्ठित पाठकों के बीच में जाते हो जिन्होंने शेक्सपियर को भी पढ़ा है
जी
और जिन्होंने प्रेमचंद को भी पढ़ा है, जिन्होंने कामायनी भी पढ़ी है, जिन्होंने मधुशाला भी पढ़ी है और जिन्होंने कीट्स को भी पढ़ा है, तो
जी
उस व्यक्ति की जो ज्ञान संपदा है या उसका जो अनुभव है वो कहीं अधिक है, तो वो उस
जी
अनुभव का प्रयोग करते हुए अपनी साहित्य रचना करता है या अपनी बात कहता है।
हाँ
जितना ज्ञान इंसान को मिला, जितने उसको अनुभव मिले, उन्हीं के आधार पर उसकी सीमाएं तय होती है। यही बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होती है
हाँ
कि उसको दुनिया का अथाह ज्ञान मिल रहा है, तो वो भी इस ज्ञान में से अधिकतम अच्छा जो मर्म है वो देने में सक्षम हो रही है।
तो कह सकते हैं कि वो आपको रचनात्मक रूप से समृद्ध तो कर देगी, यानी मौलिकता की कहीं कमी आ जाएगी कि आपके पात्र जो हैं आपके सोचने की क्षमता से उस समाज में रहते हुए भी उस समाज से अलग होना चाहते हैं। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आपकी भावुकता तक कैसे पहुंचेगी?
जी अनिता जी, ये बात आपकी सही है कि मानव के पास में भावनाएं हैं, मानव के पास में अनुभूतियां हैं
जी
और वो उसको अपने आप में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है रचनात्मकता की दुनिया में। ये अनुभूतियां फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास या तो नहीं है या बहुत कम है,
जी जी
किंतु ये मानकर चलना चाहिए कि ये अनुभूतियां भी आएंगी उसके पास, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे एजीआई की तरफ बढ़ रही है, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का तात्पर्य यह है कि वो मानव के लगभग समकक्ष होगी या शायद मानव से भी ज्यादा आगे होगी जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में। और जब ऐसा होगा तो ये आप मान सकते हैं कि उसमें भावनाएं भी समाहित हो सकती हैं और उसमें नए अनुभव सृजित करने की क्षमताएं भी समाहित हो सकती है। ये तो हुआ तकनीकी उत्तर।
जी
लेकिन यदि साहित्यिक दृष्टि से हम बात करें तो मुझे लगता है कि इसका ये मैं कहूंगा कि मानव जो है वो कुछ नया सोचने में सक्षम है, कुछ नया जो जो अब तक सृजित ही नहीं हुआ, वो कल्पना शायद एआई नहीं कर सकती, क्योंकि उसका जो ज्ञान है
जी
वो फिलहाल वो
जी
संचित ज्ञान पर, संचित डेटा पर, संचित पैटर्नों पर,
जी
उससे सीखे हुए अनुभवों पर आधारित है। तो वो नई चीज ला पाएगी या नहीं ला पाएगी कह नहीं सकते, किंतु इसमें भी एक विरोधाभास आता है, और वो विरोधाभास ये है कि अभी हाल ही में क्या हुआ अनिता जी, की आइंस्टीन का एक कोई सूत्र है, उनका कोई डॉक्यूमेंट है जो एआई को दिया गया, जिसको ये माना जाता है कि एक तरह का ये एब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसमें भी कमी निकाल दी, और आइंस्टीन को हम मानते हैं कि
जी
दुनिया के सर्वाधिक इंटेलिजेंट लोगों में से एक है। तो ये विस्मित करता है कि ये चीज उसने कहां से जान ली, और यहां पर वो एजीआई वाली जो बात है वो हमारे मस्तिष्क में आती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक समानांतर साहित्यिक इकोसिस्टम खड़ा कर सकती है, इसको आप खतरा भी समझ सकते हैं,
जी
इसको चुनौती भी समझ सकते हैं, इसको अवसर भी समझ सकते हैं, लेकिन आज जैसा साहित्य रचा जा रहा है उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता, लेकिन उससे कुछ हद तक भिन्न भी एक अलग तरह का इकोसिस्टम ला सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
SBS हिंदी पर मैं हूँ अनीता बरार। साहित्य पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रभाव है उसके आगे क्या चुनौतियां हैं, आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तकनीक के क्षेत्र में एक जाने माने नाम बालेंदु शर्मा दधीर जी के साथ। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लेखकों कवियों की एक बहुत ही बड़ी उपज तो पैदा हो ही गई है, और हो सकता है कि बहुत ही तेजी से ढेरों काव्य महाकाव्यों उपन्यासों की रचनाएं भी होने लगे। साहित्यकार तो अपनी विशेष शैली अपने विषयों की वजह से जाने जाते हैं, तो उन एआई रचनाकारों की पहचान किस शैली से होगी, इस पर बालेंदु दधीची जी कहते हैं।
जी, तो ये संभावना जो आपने प्रकट की वो बिल्कुल जायज है आपका प्रश्न। ये बात, ये खतरा जरूर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साहित्य का कमोडिटाइजेशन कर सकती है, उसको एक एक ऐसे उत्पाद में बदल सकती है जिसको कोई भी बना ले और उसको वो बिक रहा हो। मतलब बिल्कुल
जी
सोचिए, करोड़ों रचनाएं की जा रही हो
जी
और करोड़ों रचनाएं डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, वितरित हो रही हो, लेकिन उन करोड़ों रचनाओं का शायद कोई जिसको कहते हैं ना कि कोई ऐसी स्थायी महत्ता ना हो, उनकी वैल्यू ना हो, कोई 2 दिन बाद या 3 दिन बाद समाप्त भी हो जाए, कोई उसको याद भी ना करे,
ऐसी
ऐसी दुनिया में
सुविधा।
शायद हम लोग जा रहे हैं। दूसरा, आपने जो शैली की बात कही, इसको आप संयोग कहिए या दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी शैली को सीख सकती है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी 2000 या 50 या 100 रचनाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे दी,
जी
तो उसने आपकी शैली भी सीख ली,
अब
और
वो
उसने उसकी
सिर्फ
मदद से जब आपने अगला उपन्यास लिखा तो उसी शैली में वो अपना आपका अगला उपन्यास लिख सकती है। तो आपकी पहचान को वो विकृत करने की बजाय शायद उसको
आपको
आगे
एक
बढ़ा
नई
सकती है।
अच्छी पहचान दे दे, और
इसको
कोई
दोनों पक्ष आप ले सकते हैं।
जी।
जी
और एक घोस्ट राइटिंग होती है लेखन की दुनिया में, कि आपने कुछ पात्रों की कल्पना की और किसी और ने आपके लिए लिख दिया, नाम आपका ही जाता था। अभी एआई आपके लिए वही काम करेगा, लेकिन यानी मेरा मतलब है कॉपीराइट की तरफ।
तो यहां पर जो आपने प्रश्न उठाया वो नैतिकता से भी जुड़ता है
जी
और बौद्धिक संपदा से भी जुड़ता है। आज हम लोग जिस तरह की सोच में हैं, वो सोच इस बात को स्वीकार नहीं करती, इसको अनैतिक समझती है कि यदि हमने अपने लेखन में किसी अन्य व्यक्ति को जोड़
शामिल
लिया
किया।
और
जी
उनको नाम नहीं दिया, या मान लीजिए जैसे आपने घोस्ट राइटिंग की बात की, घोस्ट राइटिंग की, तो
हाँ
मन में एक नकारात्मकता का भाव आता है कि
जी
फिर।
बिल्कुल
लेकिन मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद इसमें बदलाव आएगा, इस सोच में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उपकरण बन गया, बन जाएगा या बन गया है हमारे लिए, जैसे कंप्यूटर एक उपकरण है।
जी
किसी जमाने में साहित्यकार पन्नों पर अपनी रचनाएं लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने टाइपराइटर का प्रयोग करना शुरू कर दिया, वो एक नया उपकरण हमारे बीच में आया, बाद में कंप्यूटर ने उसकी जगह ले ली, वो भी पेन और पन्ने की जगह कंप्यूटर और कीबोर्ड हो गया, वो एक उपकरण बन गया। इसी
जी
उपकरण के रूप में बाद में इंटरनेट का आगमन हुआ, हालांकि उसकी कॉन्सेप्ट अलग है, अवधारणा अलग है, लेकिन आप उसको एक उपकरण भी
जी
मान सकते हैं, क्योंकि वहां से हम सूचनाएं ग्रहण करते हैं,
हाँ
सूचनाओं को खोजते हैं। तो वो एक उपकरण आया, उसकी मदद साहित्यकारों ने भी ली, बाहरी साहित्य पढ़ने के लिए, अनुवादों को पढ़ने के लिए,
बिल्कुल
नई शैलियों को जानने के लिए एक उपकरण हमारे बीच में आया। और हमारा साहित्य स्वाभाविक रूप से ये जो नई चीजें थी उसमें भी परिलक्षित हुई, रिफ्लेक्ट हुई।
हाँ जी
उसी तरह से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक उपकरण के रूप में हमारे पास है। तो लगभग जो हमारी साहित्य की पारिस्थितिकी है, इकोसिस्टम है, उसमें जितने भी लोग हैं सभी के लिए बहुत बड़ा रूपांतरण आने वाला है। क्योंकि मैंने आपसे
हाँ
जिक्र किया कि एक समानांतर साहित्यिक पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम विकसित होगा। आज एआई की मदद लेते हुए
मदद थी
साहित्य का आना स्वीकार्य नहीं है, शायद अनैतिक भी है, कॉपीराइट का इश्यू भी आएगा मन में, लेकिन धीरे धीरे चूंकि ये प्रधान रूप से हमारी हमारे रचनात्मकता का हिस्सा बन जाएगा तो ये स्वीकार्यता भी आ जाएगी। यहां मैं एक बात बता दूं कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दो तरह से जो देखने वाले लोग हैं उनमें से दूसरे श्रेणी में आता हूं।
जो कि
पहली तरफ जो देखने वाले लोग हैं वो हैं जो जो अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं और वो ऐसी बातें कहते हैं कि नहीं देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नहीं कर सकेगी या वो नहीं कर सकेगी।
जी
मैं जिस दूसरे खेमे से आता हूं वो खेमा वो है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को देखा है
जी
और जो साहित्य और पत्रकारिता से भी और हिंदी से भी और भाषाओं से जुड़ा हुआ है,
जुड़े हुए हैं जी
यानी यानी जो दोनों के दर्द समझता है। मैं अपने आप को तसल्ली देने या साहित्यकारों को या लेखन को या साहित्य को तसल्ली देने वाला काम नहीं करता, बल्कि मैं उसको सतर्क करने वाला काम करता हूं। गंभीरता से लेने की जरूरत है, एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है कि जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विरुद्ध तर्क देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा या वैसा नहीं होगा, के पीछे कोई ठोस कारण नहीं है हमारे पास। हम सिर्फ अपनी धारणाओं के आधार पर ये बात कहते हैं कि
हाँ
नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकेगा, लेकिन हम इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ये अपने आप का एक आश्वासन ही है कि नहीं नहीं कैसे कर लेगा, इंसान का दिमाग की बराबरी कैसे कर लेगा, उस रचनात्मकता की बराबरी एआई कैसे कर लेगी, वो तो मशीन है। लेकिन एआई जो कुछ कर रही है वो एक ठोस तथ्य है, दैट इज एक्चुअली हैपनिंग, वो प्रमाण दे रही है रोज आपको। तो दोनों में ही अंतर है, हम धारणाओं और कल्पनाओं के आधार पर उसका खंडन करने की कोशिश कर रहे हैं जो तथ्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर चल रही है।
जी
इसलिए उसके बारे में सतर्क करना जरूरी है कि हम संभल जाएं या हम अपने आप को उस आने वाले समय के अनुसार ढाल लें। सन 2022 के नवंबर तक ही ठीक था हमारा सोच, लेकिन 2022 के बाद जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उस दौर में ये सोच टिक नहीं पाएगी। क्योंकि अब तो जिस अंदाज में एआई के मॉडल रोज आ रहे हैं, नई नई क्षमताओं को लेकर आ रहे हैं, वो आश्चर्यजनक है। सिर्फ 3 साल की तो अवधि हुई है अनिता जी, और 3 साल के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव के काम में से लगभग 70% काम को करने में सक्षम हो गई है। ये तो
जी
27 में भी
बिल्कुल
ग्रो करेगी, 28 में भी बढ़ेगी, 29 में भी बढ़ेगी, तो कहाँ जाएंगी इसकी कल्पना हम कर सकते हैं।
जो प्रश्न थे मन में आपने उनके बारे में जिस तरह से बताया है, मैं यही कहूंगी कि एक अलग ही अनुभव रहा मेरा आपके साथ बात करने का।
बहुत
तो
अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और आपके प्रश्नों से मुझे भी एक नया डायमेंशन जो है मेरे सामने खुलता है, और
जी
बहुत धन्यवाद आपके उन जिज्ञासाओं के लिए भी।
आपने हमारे लिए समय निकाला है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करूंगी।
इस पॉडकास्ट को डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के YouTube चैनल, Facebook या Instagram पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, टीवी चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर। बालेंदु शर्मा दधीच जी के साथ।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।